प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
पिता परमेश्वर कबीर देव जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुन रहे हो। और सत्संग में आने से प्राणी को इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। परमेश्वर कबीर देव जी ने ही यहां सत्संग की व्यवस्था की है। सत्संग का अर्थ होता है जहां पर सत्य ज्ञान के प्रवचन किए जाए, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त तथा उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान मिले थे स्वयं आकर के, किसी को भी सत्संग का ज्ञान नहीं, किसी के पास भी सत्संग नहीं। अपने आत्मा ये इतनी कड़वी सत्य है, इतना कड़वा सत्य है ये कि एक बार प्राणी इस बात से एकदम महसूस करता है कि क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था। ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, चतुर्वेदी कहलाते थे। क्या वे अज्ञानी थे? अब ये शब्द कह दे कि सचमुच वो वास्तव में अज्ञानी थे और इतना कह के छोड़ दिया जाए तो नहीं यकीन हो कि नहीं ये बात समझ मुझे बाहर की बात है। ऐसे ऐसे सतयुग में ऋषि महर्षि हुए हैं, चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए थे, क्या उनको वेद ज्ञान नहीं था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। अपुण्य आत्मा उनके साथ तो ऐसा बन गया कि बंजारे के बैल जो और फिरे देश प्रदेश और खांड लाद के भूस खावे बिन सतगुरु उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और कर राखात बबूल, जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख भर रखी थैले में बोरे में और वो खावा किक्कर बबूला में, तो उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर काटे में मुंह मारे, कमर पर लाद रखी मनुखा दाख, तो इन कौन खान दे मनुखा दाख। ये तो लद्दे अंडे थे, चारों वेदों को कंठस्थ याद करके ऊंट की तरह लद्दे अंडे थे मनुखा दाख, ये खा नहीं सके। ये तो किक्कर खावे थे, बबूल खावे थे, जैसे सराद निकाल लो कोमर गया तो उड़ा जा चिमटा काटो पहला 13 मई तक उड़े रहो, फिर उसकी महीना करते थे, फिर 6 महीने और फिर वर्षा, फिर उनके श्राद्ध शुरू कर दिए। इस काम लगे रहे ये जितने ऋषि में ऋषि थे, यहीं तक सीमित थी इनकी बुद्धि। इनको वेद ज्ञान नहीं था। अपने आत्मो ये कितना जटिल प्रश्न हो गया, यदि इसका प्रमाण ना दिया जावे तो कोई नहीं सुने। और उल्टा इस दास को निंदक की संज्ञा दे देंगे। लेकिन परमात्मा ने रजा बख्शी है आप जी के ऊपर, आप स्वयं शिक्षित हो गए, सारा पूरा विश्व और भारतवर्ष में तो 99% अब शिक्षित हैं। और 1% कोई बूढ़ा बूढ़िया पहले के रह रहे हैं, वो भी प्रौढ़ शिक्षा से, उनको भी अक्षर ज्ञान जरूर करा दिया। तो अक्षर ज्ञान से सिर्फ इन समझ में आ जाएगा कि ये दास जो बोल रहे आप सदग्रंथों में प्रमाणित है। आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, हमारे ही सदग्रंथ ये बताते हैं, उन्हीं की लीला बताती है कि उन ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी ज्ञान नहीं था, और इवन यहां तक कि श्री देवी दुर्गा को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था, और यहां तक इस ब्रह्म को सर्वपुरुष को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था। उसने भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परम पिता परमात्मा के जानकारी जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, परम शांति होगी, सनातन परम धाम प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की जानकारी गीता ज्ञानदाता कहता मेरे पास नहीं है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी खोज करो। अब आपको झलक दिखाते हैं थोड़ी सी कि ना तो ब्रह्मा को ज्ञान था, ना विष्णु को अध्यात्मिक ज्ञान था, वेद ज्ञान, क्योंकि चारों वेद जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद, ये पहला स्टेप है हमारा, जहां से ये ऋषि महर्षि अपना ज्ञान समाप्त करते हैं। जैसे जो अपने आप को महर्षि मानते थे वो कहते हम तो ओम नाम का जाप करते हैं, और यही जाप करना चाहिए, ये सुप्रीम मंत्र है, और ब्रह्म सबसे सर्वश्रेष्ठ और समर्थ भगवान है। जहां इन्होंने अपना अनुभव छोड़ दिया वहां से तो हम स्टार्ट करते हैं आगे जो समर्थ परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और इनको वो भी पूरा ज्ञान नहीं था। देखिएगा श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें सारा झाड़ा आ जाएगा, सब प्रमाणित हो जाएगा, कितना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, कितना विष्णु जी को, और कितना दुर्गा जी को, और कितना इस ऋषि महर्षि सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान था। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक यानी अनुवादकर्ता, अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर और फैक्स नंबर इनके ईमेल वगैरह ये है। इसके 28-29 पृष्ठ से हम चलेंगे, ये पहला स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ हम चलते हैं। यहां पर नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद है। व्यास जी जो हैं ये इस 18 पुराणों के राइटर हैं, लेखक हैं, और ये नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी कहते हैं महाभाग व्यास जी, यानी नारद जी से कोई प्रश्न किया व्यास जी ने तो नारद जी उत्तर दे रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी भगवानों के भगवान। नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा ये विष्णु जी के बारे में कि वो सब जगत के जगत प्रभु हैं, जगत के गुरु हैं, यानी सबको ज्ञान देने वाले हैं, देवताओं के देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा कि वो कठोर तप कर रहा है, फिर उनसे पूछना चाहा। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभो यानी विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने फिर ये मंगल वचन कहे। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर सहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम में ब्रह्मा जी रजगुण हैं, ये भी स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है यानी विष्णु जी सतोगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र सहार कार्य करने में भी संभव नहीं। आगे देखो, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। ये निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष दे दिया उसने अपनी आध्यात्मिक नॉलेज का विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के श्री देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में इन भगवती शक्ति से दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये फाइनल फैसला यानी ये है विष्णु जी का आध्यात्मिक ज्ञान जानकारी। इतने विद्वान थे और ब्रह्मा जी इनको नारद ब्रह्मा व्यास विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारी सृष्टि के देवता, देवताओं के भी देवता वे भगवान श्री हरि दिव्य कौस्तुभमणि की उनकी शोभा बढ़ाती है, संग चक्र उदम रखते हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु और देवताओं के भी देवता हैं। बता जगत गुरु बता रहे हैं इसको विष्णु जी को, कौन नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम देवताओं के भी देवता हो गए। फिर माँ जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य सब वर्तमान जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे आशी मास्त्री यदि हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान। और विष्णु जी फिर कहे, अपना मैं किसकी भक्ति करता हूं? विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। अब दुर्गा के विचारों सुनाते हैं आपको। ये था ज्ञान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री व्यास जी, इन सभी का। और विष्णु जी कह रहे हैं कि दुर्गा से इससे बड़ा कोई भगवान यानी शक्ति, भगवान देवेश्वर, इससे बड़ा कोई देवता मैं नहीं मानता, इससे कोई बड़ा भगवान है। अब दुर्गा जी क्या बताते हैं ये देखिएगा। ये है सातवां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 संक्षिप्त देवी भागवत। और यहां देखिएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, उसको शिक्षा दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पलती अपने बारे में बताती है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरी इस प्रकार करो, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं हो सकता। फिर क्या बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म से शुरू हुई थी, या इसको अक्षर ब्रह्म भी बोल रही है, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब बता दिया कि ओम का जाप करो और ब्रह्म उपास्य ईष्ट मानो और जीवात्मा जाप करे। यहां देखो, उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब यहाँ फाइनल कर दिया दुर्गा जी ने कि मेरी पूजा और अन्य देवताओं की पूजा कति छोड़कर केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे होते हैं ऐसे ऐसे, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम मंत्र है उसका, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, राजा से बताया कि सब प्राणी। और फिर क्या बताया है कि वह ब्रह्म, ओम के जाप से क्या उपलब्धि होगी, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ओम का जाप करने से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। वो कहाँ है ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्म कहाँ रहता है, वो ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुण्यात्मा अब आपको पता चल गया श्री ब्रह्मा जी नारद जी व्यास जी को कितना वेद ज्ञान है, जो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी को कितना ज्ञान है, ये दुर्गा जी को अंतिम फाइनल गॉड बता रहे हैं, कंप्लीट गॉड बता रहे हैं। अब दुर्गा क्या कह रही है कि ब्रह्म है पूज्य योग्य, ये अपने अपने नॉलेज से बता रहे हैं। अब दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम का जाप है उसकी साधना का, ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को टारगेट ईष्ट बना करके तो ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। गीता जी क्या बताती है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का सारांश है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद कोड वर्डों में, यानी बहुत संक्षिप्त में, तो उसी के आधार से बताया जा रहा है। अब वेद ज्ञान भी ब्रह्म सर्वपुरुष देता है और गीता ज्ञान भी ये ब्रह्म ही देता है सर्वपुरुष। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान कौन बोल रहा है, ये सर्वपुरुष ब्रह्म बोल रहा है। अब ये कैसे प्रवेश करता है, ये थोड़ा सा और लिंक है इससे, तब आपके समझ में आओगी। ये कैसे प्रविष्ट होता है, श्री कृष्ण जी में कैसे प्रवेश हुआ, उसका उदाहरण देते हैं, देखिएगा। ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसका अंदर का पेज दिखाते हैं, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, इसके अनुवादक हैं मुनि लाल गुप्त, इसमें संस्कृत भी साथ है। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखिएगा, चतुर्थ अंश और अध्याय दो, चतुर्थ अंश का अध्याय दो और 233 पृष्ठ पे पूर्व काल में अध्याय दो का ये 22वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव संग्राम युद्ध हुआ, संग्राम हुआ देवताओं का और राक्षसों का, जिसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये काल कैसे छल करता है, जब भी कोई ऋषि महर्षि या कोई साधु संत साधना करते हैं भगवान ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की, तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है तो वो मान लेते हैं कि ये विष्णु जी जो सतोगुण है ये सुप्रीम पावर है। यह ऐसा ही हुआ, तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। यानी देवताओं ने कहा था कि राक्षसों ने हमें पराजित कर दिया है और हमारी रक्षा करो, हमें वापस हमारा राज्य दिलाओ। उसने कहा, भगवान ने कहा इस काल ने कि राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, किसके में, पुरंजय के शरीर में, और उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी युद्ध में उसने खड़ा कर लो पुरंजय को, फिर मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। ये काल कहता है, ये विष्णु तो इसलिए कहते हैं कि विष्णु रूप में प्रकट हो गया उनके सामने, लेकिन वो अपने असली रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं कहता है कि मैं कभी अपनी किसी के सामने व्यक्त रूप में नहीं आता, व्यक्ति रूप में मैं छुपा रहता हूँ। अच्छा, तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, हो गया इससे स्पष्ट कि वो कैसे लीला करता है। पुण्यात्मा अब देखो चतुर्थ अंश ही अध्याय नंबर 3 देखो, ये है चतुर्थ अंश, ये प्रश्न नंबर 243 वो 233 था, और अध्याय नंबर 3 का यह देखना श्लोक नंबर 4 से शुरू करते हैं। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। गंधर्व उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जल साई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, ये विष्णु समझ रहे की उपासना कर रहे थे, वहां काल ने विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार अंत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, योनासव का पुत्र था मानधाता, मानधाता का पुत्र था पुरुकुत्स। कहते उस पुरुकुत्स जो पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उसके अंदर बढ़ूंगा, भूत की तरह प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपने आत्मा श्रीमद भगवत गीता के ज्ञान को किस लिए दिया गया, किस समय दिया गया? जिस समय अर्जुन कौरव पांडवों के आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी, युद्ध की तैयारी होगी, और अर्जुन देख रहा सामने वही सब रिश्तेदार, चाचे ताऊ भाई भतीजे रिश्तेदार आपस में खड़े, हम इनको मारेंगे और फिर काय का राज करेंगे, तो वो युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध कराना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पहले बहुत प्रयत्न कर चुके थे और युद्ध ना करने के कितने प्रिय थे। उन्होंने यहां तक फैसला दे दिया था कि एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और दोनों पक्षों को क्योंकि कह दिया था कि तुमने जो अच्छा लगे उसको ले लो, और यहां तक कह दिया था मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या श्री कृष्ण युद्ध करवाते और वो गीता का ऐसा ज्ञान देते जिसे नाश होना था? ये तो गीता का ज्ञान तो जो बोला वेद ज्ञान है। तो उस समय इस काल ने देखा कि युद्ध नहीं होगा, अर्जुन तो नाट गया, अर्जुन का युद्ध ना करना, युद्ध समाप्त। उसी समय ये काल जैसे इस पुरंजय और पुरकुत्स में प्रवेश हो गया, ऐसे प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी। अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछ रहा है, आप कौन हो महानुभव? तो रिश्तेदार था उसका, साला था श्री कृष्ण, तो क्या उसने पहचाना नहीं था वो? क्योंकि उसने अपना असली रूप दिखाया वो था, वो काल उसके अंदर बाहर निकल कर दिखा उसको और फिर वापस समा गया, फिर कृष्ण दिखे। तो गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है, सर्वपुरुष दे रहा है। ये कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और जो इसका अंतिम श्वास तक स्मरण करता हुआ जाता है वो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त करता है। ओम से परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत विपुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी की फिर जन्म मृत्यु होती है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता 4वें अध्याय के 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 में कहा कर तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा 4वें अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब उसके कर्म अलौकिक न्यू है, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके तो वो अनर्थ करवा दिया, ड्रा ड्रू का अर्जुन को तैयार कर दिया, और गीता के ज्ञान से युद्ध कर सका आदमी, ये तो इतना निर्मल ज्ञान है, युद्ध करता हुआ भी ना करे। और फिर जैसे पुरुकुत्स के अंदर प्रवेश करके उन गंधर्वों का नाश कर दिया और पुरुंजय में प्रवेश करके वो देवताओं को मार डाला, तो कहता ऐसे मेरे कर्म अलौकिक हैं, मैं किसी के सामने नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 श्लोक में, अपने आत्मा अब गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु में हूं, तू भी जन्म मृत्यु में है, और यहां रहेगा तो युद्ध करना ही पड़ेगा, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भी यही कहा है, हम तुम पहले भी थे आगे भी थे, मेरी उत्पत्ति तो हुई है लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, जन्म को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, वो तो दादाजी बतावे। तो परम अक्षर ब्रह्म जिसने इस सर्वपुरुष की उत्पत्ति की, जिसने हम सब की उत्पत्ति की, उसने आके कबीर परमेश्वर ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दिया, आध्यात्मिक ज्ञान बताया कि इस काल की कैसे जन्म हुआ, कब है इसकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने सारा अपने सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में कति स्पष्ट कर रखे है। अब ये कहता है गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में कहा कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो परम अक्षर ब्रह्म, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो व्यक्ति जो संत इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में श्लोक में कहा है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितना भी अक्षेत्र है, जितने प्राणी हैं, इन सब नाशवान है और ये भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं बढ़ती। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम यानी परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि श्री दुर्गा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और नारद जी और श्री व्यास जी, इनको वेद ज्ञान नहीं, क्योंकि ये तो कहे दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा कहे ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। उसके बारे में 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्म तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, फिर जैसा वो बताए ऐसे करो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना तो कंप्लीट वेद ज्ञान ब्रह्म को सर्वपुरुष को, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को, न दुर्गा जी को, और न अन्य नारद और व्यास को। अब सतयुग के ब्राह्मणों की ओर दिखाते हैं आपको, वो विद्वान बताए गए कि सतयुग के ब्राह्मण और उनको वो दुर्गा की पूजा करा करते, यही से वेद के विद्वान। ओहो देखिए यही श्री देवी भागवत 6ा स्कंद और 414 पृष्ठ जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब ये सतयुग से प्रयत्नशील है, ये नकली ब्राह्मण है, गांव गांव में मंदिरों के लठी ननगढ़वा रखे, ये बताओ वेद के विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, ये टट्टू विद्वान थे वेद के, है कहीं वेद के अंदर दुर्गा की पूजा का कहीं पर भी जिक्र? और देखो इसी में थोड़ी सी रह गया, ये तो सतयुग के ब्राह्मण बताए। अब देखो यहाँ तक तो ये सतयुग के ब्राह्मणों को बताया कि ये बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, अब कलियुग के ब्राह्मणों को क्या संज्ञा दी है? धर्म की यह स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलियुग के ब्राह्मण हैं। अब कलियुग वाले देख लो, ये संज्ञा ये उपमा दे रखी है शास्त्र में क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं, दास के ने जो प्रथम शब्द, पहली बार जो शब्द बोले थे कि आज तक परमेश्वर कबीर देव जी ने जो आकर ज्ञान दिया तत्व ज्ञान, और उनसे परिचित महापुरुषों को छोड़कर वो चंद महापुरुष हैं जो दास के नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहेब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ यूपी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनके पास वही तत्व ज्ञान था जो परमेश्वर ने आके इनको बताया, इनके अंतःकरण में फीड किया। उसके अतिरिक्त सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण विद्वानों को, ऋषि महर्षियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो पहली बार जिसने सुना होगा वो एकदम कुनीन से कड़वा लगा होगा, और अब ये लालटन दिखा दी दास ने। अब इसको देखकर पुण्यात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो पुण्यात्मा है, समझदार है, वो सचमुच प्रमाण देखते ही मान लेंगे, और फिर परमात्मा कहीं इतने प्रमाण देख कर भी जो बकवाद घटता है, जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे, इसे नाला की तरह शक्ल भी ना देखनी चाहिए। जो इतने प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है तो महापराजी प्राणी है, दुष्ट है, भगवान का जो है ना वो शत्रु है, पूरे मानव समाज का शत्रु है। तो पुण्यात्मा अब इनकी बकवाद करने एक दाड़ा नहीं करे, क्योंकि आप स्वयं शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास हैं, सबके घर रखे हैं, खासकर हिंदू धर्म में तो ये सारे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, देख लो खोल के। ये दास एक बार औरंगाबाद सत्संग कर रहा था महाराष्ट्र में, और ऐसे प्रोजेक्टर लगाकर सत्संग दिखा रहे थे, पांच सात बुजुर्ग से बैठे कवि ने देखे, तो उन्होंने कहा कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी नजर आता हमें, इसने ऊपर तो गीता प्रेस गोरखपुर का कवर चढ़ा रखे, अंदर इसने सारी बातें अपनी गलत भर रखी है। उन्हें प्रश्न नंबर वे अध्याय नंबर सारे नोट करके रखी थी, जाते देखे सामने। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तब भगत बैठे थे हमारे, वो सुन रहे थे, उनको पता था इनमें ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको पता था नहीं, देखेंगे जब पता लगेगा। घर जाकर उन्होंने मिलाया सारा जो का तो, और मैं कौन सा घर बना के ला रखे, ये तो पहले से छपी हुई है। तो उसने अगले दिन जाकर वो माथे का हाथ मारे, नौका हमने तो सारी उम्र खो दी, 70 साल का कोई, 72 साल का कोई, 65 वर्ष के रिटायर हो रहे एजुकेटेड आदमी, अरे तेरा गजब, रोज पढ़ा करते, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम ये कदी ना समझ भाई हमारे। तो कहते हैं सबुद्धिमान समाज आराम से समझ लेगा, प्रमाण देखो। और पुणात्मा इन सदग्रंथों को दिखाने की दास को कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने दे रखा है वो फाइनल है, वो सत्य है, 100 का 100 सत्य है। लेकिन इस सत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। यही ज्ञान परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के हार, पतिवरता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। परमात्मा कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे नासवान है, इनको कह कह का नहीं पता, तुम्हारे गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने वेद ज्ञान नहीं है, तो क्या कहा करते है, यो लबाड़ है, जुलाहा धानक कबीर, ये झूठ बोलता है, इसको कुछ पता नहीं वेदों और गीता और सदग्रंथों का, पुराणों का, ये अशिक्षित है, ऊठ पटांग बकवास करता है। और वो मंडलेश्वर पाखरे जी ने कह कहेगा नहीं बिरा था, क्या कहते थे भगवान, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन दन तेरा दरबार, निरंजन दन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उलटा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उलटा व्यवहार, साचे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन दन तेरा दरबार, निरंजन दन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहां सब उलटा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन दन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब निरंजन कह रहे हैं परमात्मा, इस काल को तेरे 21 ब्रह्मांड में कितने भी सच्चाई नाम की चीज नहीं, यहाँ पाखंडिया की पूजा जग में, और संत ने कहे लबाड़, इन अज्ञानियों को तो वेद के महाविद्वान दोनों के दुर्गा की पूजा कर लो, वेद के विद्वान पूर्ण सतयुग के ब्राह्मण, कलियुगाना का फिर दे रखा है यहाँ सारा निष्कर्ष, ये के सांग से वही काम इन करके दिखा दो परमात्मा, ये सच्चाई बोला करते थे कबीर जी, काशी के ब्राह्मण परमात्मा के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया उस मालिक के साथ, वो तो समर्थ थे, वो उनका बिगाड़ के सकते थे, अपने क्रम फोड़ दिए उन्होंने, तो राक्षस ही कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकता, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने, जो भगवान को पहचान लेगा वो चीटी भी नहीं मार सकता, ब्राह्मण तो वो होता है। तो पुणात्मा आप ब्राह्मण हो गए क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया आपने, अब यहां जाति से ब्राह्मण नहीं कहागा, कर्म से ब्राह्मण है, वैसे कोई फीत लगा रहा है लगाए रहो अभी ब्राह्मण है, हम पंडित हैं, कहें जाओ पंडित, उत्तम दही से पंडित हो, जैसे कोई वैद्य था, अच्छा बढ़िया प्रसिद्ध वैद्य था, और अच्छी दवाई दे जानता था, जड़ी बूटियां उसकी आराम होता था, जनता को रोगी स्वस्थ हो जाते थे, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो उनके बाद उसके वंशज भी अपने आप को वैद्य लिखने लग गए, और आगे चलकर नुरे वो जानते को ना पेट के दर्द की, उस दीरुआ भी कहे कृपा राम वैद्य, वो वैद्य सरनेम हो गया उनका। तो ऐसे ही जो पंडित थे सतयुग के, जो ऋषि थे महर्षि थे, वो ब्राह्मण को आया करते, अपने आप को पंडित को आया करते, और उन पंडिता ने युक्ति सा ज्ञान से अपने पता लग गया, अब वो थे कर्म से ब्राह्मण थे। आज कोई टीचर है और कोई खेती करता है, या कोई और अपना व्यवसाय कोई दुकान खोल रखी है, वो भी नो क्या पंडित फलाना राम, अब वो कहाँ का पंडित है, वो तो वैदाली फीत ला रहा है, पंडित ईसा पंडित से, तो यहाँ जाति से संपर्क नहीं है, कर्म से है। जैसे इस दास के गुरुजी जो थे वो इस परंपरागत पंडित थे, ब्राह्मण थे जाति के, गांव बड़ा पैतावास चरखी दादरी के पास जिला भिवानी में, और उनको जब वो 16 वर्ष की आयु के थे उनको एक कबीरपंथी संत मिल गए, उनके विचार सुने और वो उनके साथ चले गए, ब्राह्मण हो गए। यानी फिर वो कौन थे, जो मेरे गुरुजी थे वो ब्राह्मण थे जाति से, वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, जब वो उनको ज्ञान हो गया था वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो छावला गांव के जाट थे, छावला गांव के जाट थे, दिल्ली में नजफगढ़ से आगे गुड़गांव रोड के ऊपर छावला गांव है, वहां के वो किसान थे, जाट थे। और उनको एक संत मिल गए, कबीर पंथी गरीबदासी पंथ संत, वो उनके साथ, वो भी ऐसे ही त्याग कर चले गए थे, अनमैरिड थे, छोटी आयु में 17-18 वर्ष की आयु। फिर उस संत ने उनको सोचा भी इसको शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा माइंड था, समझदार थे, तो काशी विद्यापीठ में छोड़ दिया। तो काशी विद्यापीठ से वो मेरे दादा गुरुजी, उनका नाम तो कुछ और था, चिदानंद नाम था उनका, तो वो चार विषय के आचार्य बन गए वहां से। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित चिदानंद। और उनका खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है, वहां हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे पंडित चिदानंद जी आश्रम गोपालपुर गरीबदासी। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण थे, ये वैदाली फीताले, उन्हें कभी नहीं अपने आप को ब्राह्मण कहा, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित थे। तो यहाँ इस बात को समझना चाहिए, दास का कोई उद्देश्य किसी जाति विशेष या वर्ग के साथ नहीं है, हमारा इस तत्व ज्ञान को ऊपर लाना है और समझना है भगवान को और समझाना है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, इस काल को निरंजन कहते हैं कि तेरे किस ब्रह्मांड में न्याय नाम की चीज नहीं, जो निरे निकम्मे काम करे वो औरत तो बड़े सुंदर बढ़िया आहार भी करे और सारे हार श्रृंगार यानी मोतियों की हार पहन के और बहुत बढ़िया मुलमुल खासा पहन के और सारा दिन बकवाद करे, और एक पति भरता को मिले ना खादी और सूखा निरस आहार निरजन धन तेरा दरबार। या देख लो जिन्होंने जितनी बकवाद करी उन्हें खूब ठाट हुए। राजा हरिश्चंद्र जी था, सत के ऊपर था, उसका राज भी छुड़वा दिया इन दुष्टान गेल लाग के और बिरानवाटी कर दी उस महापुरुष की। तो यहाँ कहते हैं तनिक नहीं न्याय विचार। और फिर क्या बताते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, ये सच्चे न तो झूठा बताओ, इन झूठा गए तुम्हारे जी ने कहेगा भी नहीं पता। तो क्या कहा भगवान ने, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना, यानी समझदार किसान ऐसी गलती थोड़ा ही करेगा, जो भूस ने कुटे और सोचा मैं इसमें से कनक निकाल लूं, तो ये सब भूस कूट रहे थे क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्मा आज सत्संग जो चल रहा था कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी साधना करनी चाहिए, और उस परम अक्षर ब्रह्म की वे ऑफ वर्शिप के विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और कोई नहीं जानता, ये गीता जी ने फाइनल कर दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म की साधना करनी है तो ओम का नाम है, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला कहता है, कोई असंभवात यानी कभी जन्म नहीं लेता वो तो निराकार है। परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा ये भी तत्वदर्शी संत बताएगा, क्योंकि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तुम उसको अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी होता तो दर्शी संत बताओगा, केवल एक संस्कृत के जान लेने मात्र से या किसी भाषा विशेष के जान लेने से वो विद्वान नहीं होता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो वो इंग्लिश में अविद्वान है, जो इंग्लिश जानता वो संस्कृत नहीं आती वहां अविद्वान है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो विद्वान थे जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, वो किसी भी भाषा में हो, भाषा का कोई लिंक नहीं। ये कहते हैं कबीर साहब ने शुद्ध नहीं बोलना हुआ था, शुद्ध की क्या जरूरत, शुद्ध समृद्ध थे। जैसे हरियाणा का प्रधानमंत्री था एक सीधा सा जाट देवीलाल जी, और वो जब दास भी उसमें नौकरी करता था वहां सिरसा में आए थे, तो उनको कहा था वो सारे आईएएस और आईपीएस और हाथ जोड़े खड़े सारे इंजीनियर सब कुछ, गांव वाले कहने लगे जी हमारे यहाँ पीने का पानी को नहीं, दूसरे कहने लगे जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां खड़ा उसने कहा अरे सुनो इधर आओ, यहाँ सुनो आड़त लेकर उड़े ताई या सड़क बना दो, और इनकी आप पीण की बना दो, के हैं ये अब के जरूरत थी। उन्हें शुद्ध रसुद की दो अक्षर बोले, उसकी शब्द में शक्ति थी, कहने की देर थी, जब वह नोट करने लग गए सारी शुद्ध बना ली उन्हें, सारे एस्टिमेट तैयार करके तीसरे दिन माटी पड़ने लग गई वहां पर। ये बोले जाओ अंग्लेश और शुद्ध जिसके वचन में शक्ति नहीं है। तो पुण्यात्मा ये समर्थ थे कबीर परमेश्वर, उन्होंने जो भी वचन कहे जो फाइनल और कति सत्य है। अब प्रश्न चल रहा था कि जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कौन है, जिनके सत्संग में आपको पता चला कि वो परम अक्षर ब्रह्म जिसको कहते वो कबीर साहब है। एक तो सदग्रंथ हमारी थ्योरी बताओ है, और फिर जिन्हें प्रैक्टिकल किया वो बताओ कि सचमुच ये भगवान ऐसे आता है, ऐसा करता, ऐसी लीला करता है वो। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यह स्पष्ट कर रखा है वो कबीर नाम का परमात्मा वो समर्थ शक्ति है, और वो ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम के तीसरे स्थान पर रहता है, मुक्ति धाम में रहता है तीसरे लोक में, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को जो दृढ़ भक्त है उनको मिलता है। ऐसी है किसी और भगवान की कोई लीला दिखा दो किसी के इतिहास समाज तक, श्री कृष्ण जी के में, श्री विष्णु जी के में, या और ब्रह्मा जी के में, या श्री रामचंद्र जी के में हो, ऐसी की लीला हो जिनको हम भगवान मान रहे थे। उधर से हम सभी ये मानते हैं कि वेदों में जो लिखा हो सत्य है, तो वेदों में क्या लिखा यही तो हमारे तक नहीं पहुंच पाया, और परमात्मा ने जो वेदों में लिखा था, पुराणों में लिखा था, गीता जी में लिखा था, वो जो का तुम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवाएगी वो अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो ब्रह्मणे मुखे, जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से जो वाणी बोली है उसमें इन आध्यात्मिक यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार के साथ विवरण है, और उसको जानकर तू सभी कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान को ना गीता ज्ञानदाता जानता ना वेद ज्ञानदाता, ये ब्रह्म ही है, ना ये कहता है कि नहीं उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आता, वो तत्व ज्ञान बताता है। अब ये प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9-10 इकट्ठा इन्होंने चलित किया है अनुवाद करके, ये कहां से छपा है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दौन भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। कहां से छपा, वो ऊपर से प्रकाशक है, ये यहां से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 इसके मंत्र नंबर ये 26 में इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, करने वाले यजमान माने भगत, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, यानी उनके संकटों का नाश कर देता हूँ परमात्मा, और उनको पवित्र करता है यानी पाप रहित करता, उनके पाप नाश कर देता है और निर्निजम अपने रूप को, ये कई जगह लिखा है इन्होंने और भी श्लोकों में है, निर्निजम इसका अर्थ रूप होता है, कहीं पर और सैकड़ों जगह ये शब्द है, वहां कई जगह इन्होंने रूप ना लिखकर अड़ंगा लिख दिया। तो यहां मालिक की दया होगी, सद्बुद्धि की उकराई इनको, ये सच्चाई लिख गए अपने रूप को, यानी साकार हुआ, सरल करता हुआ। जैसे आज आपने दिन में गरीबदास जी की वाणी सुना था कि तेज पुंज अन्य दे धर के ईश्वर हमको भेंट ही, हल्का तेज पुंज का शरीर करके आता हो परमात्मा, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये देखो यहां है कबीर, कबीर अत्यो, इसने अत्य तो अलग ले लिया, अत्यो तो यू कर दिया और इसको अलग कर दिया, कबीर बना दिया इस अक्षर का कबीर। हम इसको कबीर बोलन लागे, कबीर हम कबीर कहते हैं वह को, तो कबीर देव कहन लागे हम इसको। इन्होंने इसका अर्थ कर दिया इस प्रकार लिख कर कबीर, यो कबीर है, कबीर भी बोले जैसे पुनर कहो चाहे पुनः कहो, कवि कहो चाहे कबीर कहो, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब आपको दिखाते हैं इन्हीं के द्वारा यथार्थ अनुवाद कैसे करना चाहिए था। गुणात्माओं ये वेदों को समझ नहीं सके, जहां इनके समझ में नहीं आया वहां इन्होंने अड़ंगा कर दिया, अनर्थ कर दिए। अब जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद की महिमा कहीं पर गाई जा रही हो, लिख रखी हो कहीं पर, तो और उसमें यजु शब्द हो और यजु का अर्थ कर दिया जाए कि भक्ति योग्य साधनाएं, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा, तो उस यजुर्वेद को कैसे खोजोगे जिसके बारे में सारी महिमा अकबर रखी है। इसी प्रकार ये वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाहीं। वेद ये चारों वेद मेरा भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों से मैं नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इनमें वे ऑफ वर्शिप नहीं है जिससे मैं मिलूं। और जिस वेद में सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में यानी स्वयं परमात्मा ने आकर सूक्ष्म वेद दिया, उसमें परमेश्वर के पाने के वो मंत्र है जो दास आपको अब दे रहा है। कहते वो चारों वेद जानते ना, जौन वेद से मैं मिलूं यानी जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते ना, उसमें वो है नहीं। तो अब यहां देखिएगा यजुर्वेद इन्हीं का अनुवाद, ये यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अनुवाद किया है। अनुवादक है, लेखक नहीं है इसका वेदों का, केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी के निर अनुवादक है, और लेखक व्यास जी हैं, वेदों का भी लेखक व्यास जी हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौर दिया हम दरियागंज नई दिल्ली से। इसमें इनके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद इन वेदों का वर्णन है, ये देखिएगा 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुर कहो चाहे यजु कहो, परपदे अपने आत्मा, इसका अनुवाद यहां किया इसने। यहां पर ये यजु शब्द है मूल पाठ में, यजु यजुर कहो चाहे इसे यजु कहो, तो अनुवाद करता है, क्योंकि ये महिमा यहाँ यजुर्वेद के विषय में चल रही है, तो यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये सिंपल इतना लिखा है मूल पाठ में, और फिर उसका अनुवाद करते समय अनुवादक सही अपनी निष्पक्ष अनुवाद करेगा, तो ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, ये लिख दिया इसने बिल्कुल। हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, और यहाँ इस यजुर्वेद ना लिख कर यहाँ लिख देते यज्ञ सतुतियां, यजुर्वेद ने किधर खोजा आदमी कि वो कहाँ किस, जो ये गुण लिखे हैं उस कहाँ किस में है, यजुर्वेद सतुतियां ये करने योग्य साधनाएं, तो ये यजुर्वेद लिखना पड़ेगा इसने। ये ठीक किया यहाँ पर। इसी प्रकार जहां कबीर लिखा है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कबीर साहब के बारे में जानकारी है, परमेश्वर के बारे में जानकारी है। उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कोई है कवि आज तक हुआ है? पुणात्मा यदि कहीं पर कवि की महिमा चल रही हो और वहां कवि का अर्थ कवि ही लिख दे, सर्वज्ञ नहीं लिख सकते उसका, वो कवि ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ महिमा चल रही परमात्मा की, कबीर देव चाहिए था। ये देखिएगा आप पढ़िए इस पूरे ऋग्वेद के इन कुछ चुने हुए मंत्रों को। अब फिर हम आगे हैं ऋग्वेद पर, यजुर्वेद रख दिया हमने, अब फिर आगे ऋग्वेद पर यजुर्वेद रख दिया। सिर्फ इतना प्रमाणित करना था कि जहाँ यजु लिखा है यजुर्वेद लिखना चाहिए। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को पुनः पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधना भक्ति, और यजमान साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्तों को खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता है, पाप कटेर पवित्र होया, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो शरीर है एक सतीथि में जो सतलोक में रहते हैं सथिरे, वो तो एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी है हम उसको देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ आए है, अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता, वर्णीय माने नेक आत्मा को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है।